आरव फैज़ को सज़ा देकर वापस करा चुका था। घर आने पर गार्डन एरिया में उसकी मुलाकात सीधे आयु से हुई, जो इस वक्त उससे नाराज़ थी। आरव आयु को बिना बताए घर से चला गया था, साथ ही वो ये भी जानती थी कि वो फैज़ के पास गया है। अचानक आयु के मुंह से निकला कि वो कल रात ही पहचान चुकी थी कि उसके पीछे जो आदमी था वो कोई और नहीं, फैज़ खान था। ये सुनकर आरव काफ़ी हैरान हुआ। आरव ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा, तुम पहले से जानती थी कि तुम्हारे साथ वो किसने किया है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उस वक्त उस आदमी की जान ले लेता। तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम उसकी जान ले लेते, आयु ने आइज रोल करके कहा। फिर भी मुझे पता होना चाहिए, तुम्हें कैसे पता चला? क्या वो तुम्हारे सामने आया था? आरव ने एक बार फिर पूछा। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आरव की आंखों में देखकर कहा, मैं उस मोमेंट को फिर से याद नहीं करना चाहती, फिर भी तुम पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। उसने मुझे पीछे से होल्ड किया था, उसके परफ्यूम की स्मेल हाइट से मुझे समझ आ गया था कि ये वही पेशेंट है जिसके लिए तुम और आयन झगड़ा कर रहे थे। आयन बिल्कुल सही था और मैंने उस पर ही गुस्सा किया। बोलते हुए आयु ने महसूस किया आरव गुस्से में उसकी तरफ देख रहा है। आयु ने उससे पूछा, वॉट, अब क्या हो गया? रियली मिसेस खुराना, तुम दूसरों के परफ्यूम की स्मेल से उन्हें पहचान लेती हो, हाइट तक तुम्हें उनकी पता होती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती करीब आ रहा हूँ और तुम इरिटेट हो जाती हो, आरव ने हल्के गुस्से में कहा। आयु ने उसे मनाने के बजाय उसकी तरफ सार्कास्टिक वे में सिर हिलाकर कहा, यू नो वॉट आरव, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, कहकर वो वहाँ से अंदर चली गई। आरव भी उसके पीछे जाने के बजाय वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। उसने पीछे से बड़बड़ाकर कहा, मैं नहीं, तुम इम्पॉसिबल हो, मुझे ना उस कमीने को मार ही देना चाहिए था। फिर आरव भी धीमे कदमों से चलते हुए अंदर जा रहा था। उसने कबीर को डाइनिंग टेबल पर देखा, जो गौरवी जी और आयु के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। गौरवी जी ने ही आयु को कबीर और आरव का वेट करने के लिए कहा था। आरव चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गया। गौरवी जी ने आरव और आयु के चेहरे की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। गौरवी जी ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम दोनों में फिर से लड़ाई हो गई है, क्यों है ना कबीर? बोलते हुए उन्होंने कबीर की तरफ देखकर पूछा। हाँ, कह सकते हैं दादी, आई मीन हस्बैंड वाइफ में तो ये सब चीज़ें आम होती हैं, कबीर ने आरव की तरफ देखकर जवाब दिया। उसके बाद आयु बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे और आरव के बीच सब ठीक है ना आरव? आयु ने कन्फर्म के लिए आरव की तरफ देखा। वो अपनी बातों से गौरवी जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। आरव ने नामे सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। अच्छा, मेरी हाइट कितनी है, तुम्हें पता भी है? आयु हैरानी से आरव की तरफ देखने लगी। उसने बिना कुछ छुपाई सीधे सीधे उन दोनों के सामने सब सच बता दिया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नोट करते हुए गौरवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे ऐसे मत देखो, इसके दिल में जो भी होता है वो इसकी ज़ुबान पर भी होता है, ही इज़ नो फिल्टर्ड पर्सन। कुछ ज़्यादा ही नो फिल्टर्ड है, आयु ने आइस रोल करके कहा। बात को घुमाओ मत मिसेस खुराना, मैंने तुमसे अपनी हाइट पूछी है, चुपचाप बताओ, अगर एक इंच भी इधर उधर किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। आरव अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ था। आयु को सच में आरव की हाइट के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। उसने लाचारी भरी नज़रों से कबीर की तरफ देखा तो उसने टेबल के नीचे अपनी उंगलियों से आरव की हाइट बताई। कबीर के हेल्प करने पर आयु के फेस पर स्माइल आ गई। वो आरव की तरफ देखकर बोली, अरे इसमें इतना बहस करने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है ना तुम्हारी हाइट, तुम 6 फीट लंबे हो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे अच्छे से दिख रहा है, यहाँ कौन तुम्हारी कैसे हेल्प कर रहा है, आरव ने मुंह बनाकर जवाब दिया। फिर उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, चलो ऑफिस चलते हैं और आज रात को हम भी बिजी रहेंगे, घर पर नहीं आएंगे, फिर किसी को शायद मेरी इंपॉर्टेंस समझ आ जाए। हाँ तो तुम अकेले बिजी नहीं रहने वाले, मुझे भी काम है, मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी, आयु ने चिढ़ते हुए कहा। आरव अब तक काफी नॉर्मल वे में बहस कर रहा था, लेकिन आयु को जिद करते देख उसने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और कॉल्ड वॉइस में कहा, आई डेयर यू मिसेस खुराना, इस घर से एक कदम भी बाहर निकाल कर दिखाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, देखो मुझसे ऐसे बात मत करो वरना मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी, आयु ने जवाब दिया। उन दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी, उन्हें चुप करवाने के लिए गौरवी जी ने तेज आवाज में कहा, अब बस भी करो तुम दोनों, स्कूल के बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, आरव तुम अपने ऑफिस जाओ, अगर ऑफिस में ज्यादा काम ना हो तो रात को वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है, और आयु तुम अगले कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहोगी और रेस्ट करोगी, जब देखो दिन रात काम में लगी रहती हो। गौरवी जी ने अपना फैसला सुना दिया था, उनके आगे उन दोनों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आरव कबीर के साथ ऑफिस चला गया तो आयु गौरवी जी के साथ ही थी। हॉस्पिटल में दोपहर तक फैज के सारे टेस्ट हो चुके थे और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। जैसा कि आरव ने प्लान किया था, रिपोर्ट उसी हिसाब से आई थी, एक यूनिक ट्रक का ओवरडोज लेने की वजह से फैज की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। सबको यही लग रहा था, लेकिन असली सच सिर्फ फैज ही जानता था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम फैज को घेर कर खड़ी थी, उनमें अयान भी एक था। फैज का ब्रेन एनालिसिस किया गया था, न्यूरोसर्जन होने के नाते वो भी उनकी टीम में शामिल था। अयान ने अपनी रिपोर्ट बताते हुए कहा, इनका ब्रेन अभी भी एक्टिव है, ये अपने आसपास की चीजों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से उनकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। अयान के पास खड़ी पैरालिसिस स्पेशलिस्ट ने कहा, हाँ शुक्र है दिमाग पर उस ट्रक का असर नहीं पड़ा, उनकी बॉडी को हील होने में टाइम लगेगा, कुछ नहीं कह सकते कि बॉडी कितना टाइम लेगी। हमें पेशेंट के घर वालों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, पर हम उन्हें कैसे कॉन्टैक्ट करें? मैंने पेशेंट का फॉर्म मंगवाया था, उसमें इनके अलावा किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ था, अटेंडिंग डॉक्टर ने कहा। उनके साथ में दो नर्सेज भी खड़ी थी जो एनी टाइम फैज के साथ रहती थी। उनमें से एक बोली, कल शाम इनसे मिलने एक लेडी आई थी, अंदर आने से पहले उन्होंने बाहर अपना एनरोल किया होगा, हम उनकी डिटेल्स निकालकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नर्स जिस औरत की बात कर रही थी वो छवि सिंघानिया थी। उसकी बात सुनकर अयान तुरंत समझ गया, वो नहीं चाहता था कि छवि सिंघानिया यहाँ आए और फिर फैज के बाप को सब बता दे। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, अयान जल्दी से बोला, उसकी जरूरत नहीं है, हम क्यों इसके घर वालों को या किसी और को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमें पुलिस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इस इंसान ने हॉस्पिटल के अंदर ड्रग लिया है, ये एक ड्रग एडिक्ट हो सकता है या कोई ड्रग पेडलर, मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ, वो ये मामला अपनी तरफ से खुद देख लेगी। अयान का लहजा काफी सख्त था और वो जो कह रहा था वो सब सही भी था। सारे डॉक्टर को ना चाहते हुए भी उसकी बात पर हामी भरनी पड़ी। अयान वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कदम वहीं पर रुक गए, सामने छवि सिंघानिया खड़ी थी। फैज की ये हालात होते ही किसी ने छवि को पहले ही कॉन्टैक्ट कर लिया था।
अयान की बात सुनकर वो गुस्से में उसे घूर रही थी और फिर अंदर आते हुए बोली, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मैंने सुना था डॉक्टर्स के लिए उसके पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं होता, इस बेचारे की हालत इतनी खराब है कि ये अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे हैं और आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं, थोड़ी सी भी दया है आपके अंदर? और क्या सबूत है आपके पास इनके खिलाफ कि इन्होंने ड्रग लिया है? हो सकता है किसी दवाई का रिएक्शन हो गया हो या फिर किसी ने जानबूझकर इसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर दिया है, बोलते हुए छवि ने अयान की तरफ देखा। अयान समझ गया था उसका इशारा सीधे सीधे आरव या आयु की तरफ था। एक्सक्यूज मी, आप इस तरह सीधे सीधे हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, बिना सबूत के तो बिल्कुल नहीं, वैसे भी सच जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ, अयान ने बिना डरे जवाब दिया और वहाँ से जाने लगा। छवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा अयान यहीं पर रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं इस मामले को अपनी तरफ से हैंडल कर रही हूँ ना, फिर तुम्हें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है? छवि अयान को इस तरह डांट रही थी जैसे घर पर उसके साथ बहस करते टाइम डांटती थी। पीछे खड़े डॉक्टर की टीम और नर्स में फुसफुसाहट चालू हो चुकी थी, वो छवि और अयान के रिश्ते को जानते थे। ये तो डॉक्टर सिंघानिया की मॉम है ना, ये अपनी मॉम के साथ बहस क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मॉम इस इंसान को जानती है? पीछे से कोई बात कर रहा था। अयान उनकी तरफ पलटकर गुस्से में बोझा, आप सब गॉसिप करना बंद करेंगे? कोई उनमें से कुछ कहता उससे पहले छवि ने तेज आवाज में कहा, मैं आपके पेशेंट की फैमिली को अच्छे से जानती हूँ, मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट कर लिया है, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, बाकी उनके आने के बाद ही ये डिसीजन होगा कि इस केस को लेकर क्या करना है, तब तक आप इनका ट्रीटमेंट कीजिए और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। भले ही फैज छवि सिंघानिया को पसंद ना करता हो, लेकिन इस वक्त छवि को वहाँ देखकर फैज ने राहत की सांस ली, चलो कोई तो ऐसा था जो उसे सपोर्ट कर रहा था। डॉक्टर्स की टीम फैज के इलाज में जुट गई तो वहीं अयान वहां से चला गया, वैसे भी उसका वहां कोई काम नहीं था, फैज की ब्रेन रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। भाई पक्का गुस्सा करेंगे, पता नहीं मॉम की प्रॉब्लम क्या है, हर जगह अपनी नाक अड़ाती रहती है, खासकर तब जब मामला भाई का हो, मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। अयान गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने केबिन में जा रहा था। उसने आरव को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन आरव उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था और ना ही कबीर, इससे वो समझ गया कि वो दोनों जरूर किसी मीटिंग में होंगे। अयान ने मैसेज करके पूरी सिचुएशन के बारे में आरव को बता दिया था। वहीं एजाज खान को भी फैज के इस हेल्थ कंडीशन की खबर पता चल चुकी थी, वो बहुत गुस्से में था और मुंबई आ रहा था। कहानी में लव स्टोरी के अलावा थोड़ा सस्पेंस भी है। अच्छा, आपको कौन से जॉनर की कहानी पढ़ना ज्यादा पसंद है? लव स्टोरी, हॉरर स्टोरी, डार्क लव स्टोरी, मर्डर मिस्ट्री या फैंटेसी स्टोरी?